नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट की आसन सुनवाई के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में राजनीतिक नाटक देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आज एक फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार के बहुमत को साबित करने के लिए विश्वास मत का सामना करना पड़ेगा। कागज पर भाजपा के साथ शिवसेना के शिंदे खेमे के पास आरामदायक बहुमत है। विश्वास मत से एक दिन पहले भाजपा ने एक महत्वपूर्ण लड़ाई जीती, क्योंकि उसके नेता राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने शिंदे को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अगर हम आंकड़ों को देखें तो बड़ी तस्वीर यही दिखाती है। शिवसेना के 55 विधायक हैं, राकांपा के 53, कांग्रेस 44, भाजपा 106। शिवसेना में बागी यश शिंदे खेमे के पास 39 विधायक हैं, जबकि ठाकरे समूह के पास 16 विधायक हैं। 5 दिन पुरानी शिंदे सरकार महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट के लिए उतरेगी। यहां महाराष्ट्र विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फोकस में होंगे, क्योंकि शिवसेना के बागी फ्लोर टेस्ट से पहले मान्यता चाहते हैं। भाजपा का कहना है कि जब विधायी मामलों की बात आती है तो अध्यक्ष का विचार अंतिम होता है, लेकिन उद्धव ठाकरे समूह के विद्रोहियों की अयोग्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ रहस्य बना हुआ है। कर्नाटक की सिनी शेट्टी को रविवार को VLCC फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का विजेता घोषित किया गया। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में राजस्थान की रूबल शेखावत फेमिना मिस इंडिया 2022 के फर्स्ट रनर अप रहीं और उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान को सेकंड रनर अप चुना गया। चयन मंडल में अभिनेत्री नेहा धूपिया और मलाइका अरोड़ा, डीनो मोरिया, पूर्व क्रिकेटर मिताली राज, डिजाइनर रोहित गांधी और राहुल खन्ना, कोरियोग्राफर श्यामक टावर शामिल थे। हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि अगले 30 से 40 साल बीजेपी का युग होगा और अगले कुछ दशकों में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। भाजपा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पारिवारिक शासन को खत्म कर देगी। शाह ने 2002 के गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को क्लीन चिट मिली है। शाह ने कहा, ये आदेश ऐतिहासिक था, मोदी ने संविधान में विश्वास रखा और SIT का सामना किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए बनाया था। केंद्रीय मंत्री ने नेशनल हेराल्ड मामले में ED द्वारा राहुल गांधी को तलब किए जाने के बाद किए गए विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने कभी इस तरह का ड्रामा नहीं किया, मोदी ने भगवान शिव की तरह अपने ऊपर फेंके गए सभी जहरों को पचा लिया। शाह ने कहा कि आज कांग्रेस हताशा और निराशा में केंद्र सरकार की हर कल्याणकारी योजना का विरोध करती है, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हो, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करना हो या फिर कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण हो। शाह ने जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान किया और हाल ही के विधानसभा और विभिन्न उपचुनावों में पार्टी को मिली जीत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भाजपा की विकास और बेहतर प्रदर्शन की राजनीति पर जनता की मुहर है। इस सप्ताह भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई। इस बीच बेंच का हिस्सा रहे एक जज ने पर्सनल ओपिनियन रखने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया के उपयोग पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने जजों के खिलाफ देश में कानून और शासन बनाए रखने के लिए ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंडेटरी रेगुलेशन का आह्वान किया है। जस्टिस JB पारदीवाला ने शनिवार को कहा, सोशल और डिजिटल मीडिया आजकल मुख्य रूप से जजों के खिलाफ व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के बजाय उनके निर्णयों में आलोचनात्मक मूल्यांकन शुरू कर देते हैं। ये न्यायिक संस्थान को नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी गरिमा को कम कर रहा है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, संवैधानिक अदालतों ने हमेशा सूचित असहमति और रचनात्मक आलोचनाओं को शालीनता से स्वीकार किया है, लेकिन उनकी दहलीज ने हमेशा न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत एजेंडा संचालित हमलों को रोका है। उन्होंने आगे बताया, ये वो जगह है जहां हमारे संविधान के तहत कानून के शासन को बनाए रखने के लिए देश में डिजिटल और सोशल मीडिया को अनिवार्य रूप से रेगुलेट करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पारदीवाला की वोकेशन बेंच ने पैगंबर पर टिप्पणी के लिए शुक्रवार को शर्मा के खिलाफ ये कहते हुए फटकार लगाई थी कि उनका अपनी जुबान पर काबू नहीं था और उदयपुर सहित देश में जो हो रहा है उसके लिए अकेले जिम्मेदार थीं। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस कोल इंडिया लिमिटेड CIL के पहले कोयला आयात करने के टेंडर के लिए सबसे कम लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। ये टेंडर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों की ओर से सरकारी कोयला उत्पादन कंपनी कोल इंडिया ने निकाला था। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मामले से जुड़े लोगों ने बताया है कि अडानी एंटरप्राइजेस ने फ्रेट ऑन रोड के आधार पर 2.416 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति के लिए 4,033 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। इसके बाद मोहित मिनरल्स ने 4,182 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जबकि तीसरी सबसे कम बोली चेट्टीनाड लॉजिस्टिक ने 4,222 करोड़ रुपए की लगाई है। बता दें, आयातित कोयला 7 सरकारी और 19 निजी बिजली उत्पादन करने वाले पावर प्लांट को दिया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।